तो उसने अपना एक पैर उठाया, हजरी का दूसरा उठाओ, ये नहीं उठा सकता। कि जितना तूने पैर उठाया ना, इतना तेरे तुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कुल्ली इख्तियार नहीं तुझे, और इसी पर तेरी खुदा के यहां हिसाब होगा। हाँ, इंसान मजबूर महल भी नहीं है और इंसान मुख्तारे कुल भी नहीं है कि जो चाहे कर लेना। इसलिए बहुत ही मरतबा आदमी चाहता कुछ है, होता कुछ है। हजरत अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह को पहचाना अपने इरादों के मैं कामयाबी न होने की बिना पर, कि मैं चाहता कुछ हूं और होता कुछ है। मालूम होता है मेरे इरादों के पीछे कोई ताकत है जो मुझे अपने इरादों में कामयाब होने नहीं देती, मेरी चाहत के खिलाफ नतीजा आता है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? तो करने वाले कौन है? अरे बोलो तो जोर से, अंदर उतारने की नीयत से बोलो ताकि हमारे दिल में ये चीज उतर जाए। आज तो हम धोखे में है। हाँ, माल वाला माल के धोखे में, ओहदे वाला ओहदे के धोखे में, हुकूमत वाला हुकूमत के धोखे में, और मेरे दोस्तों अपनी ताकत कुवत वाला अपने ताकत कुवत के धोखे में काम कर रहे हैं। वहां पैसों से हो रहा है, मुल्क से हो रहा है, कुर्सी से हो रहा है, यही धोखा इंसानों का है। हाँ, और नबी अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों को इसी धोखे से निकालने के लिए आते हैं, और सबसे पहले इंसानों के जबान से इकरार करवा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कहीं से जो हमारी आंखें देख रही हैं, जहां से जो कुछ होता हो देख रही है, यह हमारी आंखों का धोखा है, वहां से नहीं हो रहा। इल्लल्लाह, एक अल्लाह ही से सब कुछ हो रहा है। जमीन जमीन उगाती नहीं है, अल्लाह अपने कुदरत से जमीन में गल्ला उगाते हैं। हाँ, भैंस दूध नहीं देती, अल्लाह की कुदरत से भैंस को दूध मिलता है, फिर इंसान उस दूध को लेता है। इसीलिए भैंस, एक जमाना भैंस पर ऐसा गुजरता है, खाती है, पीती है, सब कुछ करती है, लेकिन दूध बंद है। मुझे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो भैंस रोजाना 10 किलो दूध देती थी, बिल्कुल देती ही नहीं। क्या है? क्या अल्लाह की तरफ से उसका मामला? अल्लाह, ये भैंस इंसानों को अपनी जिंदगी से समझाती है, ए दुनिया के इंसानों, तुम धोखे में हो गए, दूध मैं देती हूं, मैं दूध नहीं देती, दूध तो अल्लाह देता है, वो मुझे देता है तो मैं तुम्हें देती हूं, और वो जब रोक लेता है तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, मुर्गी अंडा देती, हम क्या समझते मुर्गी अंडा दे रही है? कन्हा, इसीलिए मुर्गी पर भी एक जमाना आता है जिसमें अंडा देना बंद कर देती है, और कौ कौ करती है, कौ कौ क्या कहती है, मैं नहीं देती, मैं नहीं देती, तुम धोखे में हो। एक अल्लाह वहदहु ला शरीक ला, उसी से सब कुछ हो रहा है और वही सब कुछ कर रहा है, और अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरे सिवा किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तुम मारे मारे मत फिरो, मेरी तरफ आओ। हाँ, और अल्लाह ने अपने बंदों की जरूरतों को पूरा करने और अपने बंदों को की मदद करने के लिए अल्लाह ने अपना दीन दिया, अहकाम दिए कि अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह खुश होकर तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को खुशहाल बना देगा। आज दुनिया के इंसान परेशान है, खुशहाल जिंदगी नहीं है। हाँ, अगर हम सोचें तो मेरे, चलो झोपड़े से मैं रहने वाले की वो जिंदगी खुशहाल नहीं है, ठीक है बेचारे का झोपड़ा है, ऊपर टीन है और वगैरह ये है, बंगलों में रहने वाले क्यों परेशान है? इनके तो पक्के बंगले हैं, मार्बल के पत्थर लगे हैं, और इनके घरों में तो एसी लगा हुआ है, फिर परेशान क्यों है? इनके पास तो दुनिया की वो तमाम चीजें, जिन चीजों से हम धोखा खा रहे हैं, और इस दुनिया के माल को हासिल करने के लिए आज का इंसान बेमानी का रास्ता इख्तियार करता है, ताकि मुझे माल मिल जाए, मैं मालदार बन जाऊं। मेरे दोस्तों, वो माल आने के बाद भी वो तो बेचैन है, तो मैं मलावी में मुलाकात में गया, मुझे ले गए वो, तो वो हमारे यहाँ के मेहमान थे, गुजराती मेहमान थे। तो मेरे मैं उनके घर में दाखिल हुआ, मैं बंगले को बंगला नहीं कहता, मैं घर कहता हूँ। तो वीलो वीलो क्या वीलो, पत्थर और मट्टी का एक ढेर है, और क्या ये आदमी इसमें फुलका है, मारो मारो बंगलों के लो, बंगले में है क्या? अगर बंगला इज्जत की चीज होती ना तो बंगले में चूहे भी रहते हैं, बंगले में बिल्ली भी रहती है, बिल्ली और बिलाड़ा दोनों रहते हैं, आते हैं। ये इज्जत की चीज नहीं है, ये तो रहने के लिए मकान है। कोई झोपड़ा होता है, कोई मट्टी का होता है, कोई ईंट का होता है, कोई पत्थर का होता है, लेकिन इसमें जिंदगी बनाना अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। हाँ, जिंदगी बनने का ताल्लुक इससे नहीं है। हर आदमी अपने आप से कह रहा है। तो मैं बैठा उसके पास, तो वो आए बैठे और मुझे कह रहे हैं, मौल साहब अल्लाह नु आपेलो मारी पासे घणू छे, अल्लाह नु आपेलो मारी पासे घणू छे, पण मारा पासे पीस ऑफ माइंड नथी, मुझे राहत नहीं है, चैन नहीं है, है सब कुछ दुनिया, चैन नहीं है। खैर मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा हिसाब ये तुम्हारा घर है और घर में एसी है और ये सोफे और तमाम चीजें हैं, ये तो तुम्हारी बॉडी को राहत पहुंचाने के लिए है, इससे तो राहत बॉडी को राहत पहुंचती, दिल को राहत नहीं पहुंचती। और दिल को राहत पहुंचे इसलिए अल्लाह कुरान पाक में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की इताअत में अल्लाह ने दिलों का सुकून रखा है। और मैंने कहा साहब अपने पास तो नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है, दिलों को सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह ये कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन लो, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के हुक्मों में चलने में, सच्चाई में, अमानतदारी में, मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी में और अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारने में, नमाज पढ़ने में, जकात देने में और हज पढ़ने में और रोजा रखने में, और अल्लाह ने अपने बंदों के साथ जिंदगी गुजारने के जो हुक्म दिए हैं उन हुक्मों को पूरा करने में अल्लाह ने दिल का सुकून रखा है। दिल का सुकून इसी में है। हाँ, अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ तबकात में पैदा किया है और हर एक को हुक्म दिया है। हाँ, अगर किसी को बड़ा बनाया है दुनिया में दुनिया के अतबार से तो उसे हुक्म दिया है, गरीबों को तू हकीर मत समझ और अपने अंदर घमंड पैदा मत कर कि मैं बहुत बड़ा हूं ना। बड़ाई अल्लाह को पसंद नहीं है, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी दुनिया से राय के दाने के बराबर घमंड और किब्र लेकर मरेगा इसकी सफाई जहन्नम की आग में ही होगी। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में एक बात फरमाई है, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शयअ मज़कूरा, क्या इंसान पर एक जमाना ऐसा नहीं गुजरा कि वो तो काबिले जिक्र चीज ही नहीं था? इंसान को अल्लाह ने पैदा किससे किया है? एक नापाक पानी के कतरे से, नापाक पानी का कतरा, और ऐसा गंदा कतरा होता है वो कि अगर उसे कपड़े से सही न धोया जाए तो उसकी बदबू नहीं जाती, नापाक पानी का कतरा। इससे अल्लाह ने इंसान को बनाया है। अब जो जिसकी असल ये है नापाक पानी का कतरा, उसे घमंड करने का क्या हक है?
हम
हमने इसे देखने वाला बनाया, हमने इसे सुनने वाला बनाया। और यूं भी अगर इंसान गौर करे कि असल इंसान कौन है, कि इंसान एक गंदगी की फैक्ट्री है। अगर एक दिन न नहाए तो बदबू की वजह से कोई इसके पास न बैठे। अगर ये अपने मुंह के दांत को साफ न करे तो इसकी मुंह की बदबू की वजह से इसके पास पे आए नहीं। ये अच्छा खासा खुशबूदार खाना खाता है, अब खाना खाने के बाद पाखाने के रास्ते से बदबूदार करके उसको बाहर निकालता है। इसकी पेशाब में बदबू है, इसके पसीने में बदबू है, इसे घमंड करने का क्या हक है? इंसान अपनी असल को देखे, मैं कौन हूं? इसीलिए एक अल्लाह वाले बैठे हुए थे, बादशाह जा रहा था तो लोगों ने कहा हटो हटो, तो कुछ सुना नहीं उन्होंने, क्या बादशाह आ रहे हैं? कहा है? जब गुजरा बादशाह तो कहा आप जानते हो कौन है, आप जानते हो कौन है? कहा जानता हूं, अभी पेशाब पाखाने की एक गठड़ी है वो, और मर जाएगा तो कब्र में जाके कीड़ों की गजा है, ये है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के अहकाम है, गरीबों को खुदा का हुक्म है, तुम किसी मखलूक के सामने हाथ न फैलाओ। हाँ, अल्लाह को बहुत नापसंद है कि इंसान अल्लाह का दर छोड़कर किसी इंसान के सामने हाथ फैलाए। अल्लाह ने सवाल को हराम करार दिया है। सवाल की इजाजत कब दी है कि आदमी इतना फाके में, दो तीन दिन फाके के गुजर गए, अब नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो अब इसके लिए अल्लाह ने कहा मांग मत, तेरे लिए जो चीज मैंने मुर्दा जानवर हराम करार दिया है वो खा ले तेरी जरूरत के लिए, लेकिन किसी दूसरे के पास न जा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी सवाल का दरवाजा खोलता है अल्लाह उस पर फकर का दरवाजा खोलता है। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजो, अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है, उस अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका इज्जत वाला बनाया है, इज्जत के साथ। इंसान उस तरीके हयात को इख्तियार करेगा, दुनिया में इज्जत मिलेगी। आप देखिए, कोई गरीब किसी के पास न जाए और अपने अपने हालात को छुपा के जिंदगी गुजारे तो लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते हैं, किसी से मांगता नहीं है ये। और बच्चा भी माँ बाप के पास बार बार मांगता है तो माँ बाप की निगाह से कहते क्या घड़ी घड़ी लाओ लाओ लाओ, कोई दूसरा भी रास्ता है लीजिए। इसी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने साहबी से फरमाया इज़ा साल तफसलिल्लाह, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, और अल्लाह बड़े देने वाले हैं। अल्लाह को अपने बंदों का सवाल बहुत पसंद है। जब बंदे अल्लाह की बारगाह में मांगने जाते हैं, सवाल करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह बहुत खुश होता है, मेरा बंदा मेरे पास आया। वो तो देने नहीं बैठा है, उसने पांच वक्त की नमाज अपने बंदों पर फर्ज इसीलिए की है कि मेरे बंदे मेरे दरबार में आए। मस्जिदें अल्लाह के दरबार हैं। मस्जिद क्या बोलो, अल्लाह का दरबार है। इस दुनिया वाले अपने वहां अपनी अपनी ऑफिस में अपने दरबार बुलाते कि हो साहेब मने याद रखो, और साहेब कौन है? साहेब पेशा पहाने में भी अल्लाह का मोहताज है। अगर अल्लाह इसकी पेशाब रोक दे कोई इसको करा सकते पेशाब? नहीं, सब मोहताज है। ये है कि अल्लाह ने उसके एक मकाम दिया है, दर्जा दिया है। इस मेरे भाइयों, असल बुनियाद ये है, अल्लाह का दरबार मस्जिदें हैं। अल्लाह ने इसीलिए हर जगह अपनी मस्जिदों के बनाने का अपने बंदों को हुक्म दिया। और मस्जिदें कैसी, मस्जिदें वक्फ होनी चाहिए अल्लाह के नाम पर, इसे वक्फ करना चाहिए। इस पर न मुतवल्ली का कंट्रोल है, न मुतवल्ली इसका मालिक है। मुतवल्ली तो खादिम है। हाँ, घर अल्लाह का है, इसमें किसी को रोकना मना है। और अल्लाह का घर रात और दिन खुला रहता है। ये तो आजकल में तो हमने इनमें दरवाजे रखे हैं, वरना पुराने जमाने की मस्जिदों को देखो, उसे दरवाजा होता ही नहीं था। ये तो अल्लाह का घर है, रात भी ये दर खुला हुआ है। लेकिन आज हमने अपनी मस्जिदों को ऐसा बनाया कि जिसमें मेरे दोस्तों चीजें ऐसी रखी जिसके चोरी होने का खतरा होता है, कभी दरवाजा लगा मजबूत कोई खोल ना सके। वरना अल्लाह का घर, अल्लाह का दरबार हर वक्त खुला है, और अल्लाह ने अपने बंदों को हर वक्त अपने दरबार में आके दुआ का हुक्म दिया है कि मेरे बंदों कोई भी जरूरत आओ हमारे दर में, हम देंगे। और पांच वक्त अल्लाह ने फर्ज किया कि पांच वक्त तो आओ, क्यों आओ, अपनी जरूरतों के लिए आओ। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी जरूरतों को फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मांगा करो, फर्ज नमाज के बाद अपनी जरूरतों को अल्लाह से मांगो। अल्लाह देने से खुश होता है, अल्लाह देने से खुश होता है, और जितना तुम ज्यादा मांगो इतना खुश होता है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमक भी अल्लाह से मांगो, वो भी तुम्हारी जरूरत है, सुई भी अल्लाह से मांगो, छोटी से छोटी चीज अल्लाह से मांगो, और बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह ही से मांगो, दुनिया के इंसानों के पास न जाओ। इसलिए अल्लाह के पैगंबर नबी ने एक बात फरमाई कि जो गरीब गुरबत की हालत में इसके घर में फाका है, गुरबत है, वो अपनी गुरबत को अपने फाके को छुपाए, किसी के सामने जाहिर ना होने दे, तीन दिन सब्र कर ले किसी के सामने उसको जाहिर ना होने दे, तो अल्लाह ने अपने जिम्मे तय कर लिया है कि अल्लाह अपने उस बंदे के लिए एक साल की हलाल रोजी का दरवाजा खोलेगा। अपने बेसब्रे हो जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह को बहुत कम पसंद है इधर उधर, नहीं मेरे पास ही आओ, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मेरे पास सब कुछ है। वही खजाइन समावाते वर्ल्ड, अल्लाह ही के पास खजाने हैं, हर चीज के खजाने हैं, हर चीज के खजाने, और वो इतने खजाने हैं कि जिन खजानों में कभी कमी नहीं आती। सारा साल से अल्लाह ताला बारिश बरसा रहा है, सारा साल से अभी तक उसके पानी के खजानों में कमी नहीं आई, सारा साल से इंसानों को पैदा करता है, उसके यहां नाक के कान के हर चीज के खजाने हैं। दुनिया में कितने लोग पैदा होते हैं, सबको दो आंखें देता है, दो कान देता है, और दो हाथ देता है, दो पैर देता है, और सबको अल्लाह देकर उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं। अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाले, अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाले, और वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा कौल हो अल्लाह अहद, कह दीजिए ऐ मोहम्मद साहब अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो हो अल्लाह अहद एक ही है और कोई नहीं। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, दुनिया का हर इंसान अल्लाह का मोहताज है, दुनिया का इंसान पैदा होने में और पैदा होने के बाद बड़ा होने में और बड़ा होने के बाद मेरे दोस्तों मरने में ये अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह अगर मौत न दे मर नहीं सकता। दुनिया की हर चीज अपने वजूद में अल्लाह की मोहताज, अपने बाकी रहने में अल्लाह की मोहताज, और फना होने में अल्लाह की मोहताज है, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। समझ कहते उसी को है, उसका हर इंसान हर मखलूक मोहताज हो और वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह समझ, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी का बेटा नहीं और अल्लाह की कोई औलाद नहीं, न वो किसी की औलाद है न उसकी कोई औलाद है। ये इंसानों की तमाम मेरे दोस्तों गलत बयानी है, और इंसानों की मेरा गलत सोच है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं और अल्लाह की कोई औलाद नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई मिस्ल नहीं, लैस कमिस्लिही शैई, अल्लाह की हमशक्ल और अल्लाह का मिस्ल कोई नहीं, वो अकेला है। और अल्लाह का हर इंसान से इस बात का मुतालबा है मुझे मानो जैसा कि मैं हूं, मैं अकेला ही हूं, और मुझे मानो जैसा और मेरी मानो जैसा कि मैं तुमसे चाहता हूं। अल्लाह ताला शानो हर इंसान से इस बात का मुतालबा करता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तुम मेरा किसी को पार्टनर ना बनाओ, मैं अकेला ही हूं और मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, اور مجھے سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا, اللہ وہ ہے. ہاں دنیا کے ہر مذہب میں جتنے مذاہب ہیں جو اپنے مذہب کہتے ہیں, ان کی جو اصل کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ سب موجود ہے میرے دوستو. ہر کتاب میں نرنجن نراکار ہے, اللہ نرنجن نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے اور وہ نرنجن ہے, اس کے نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے, وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے, انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لیکن ہاں انسان کو ہمیشہ اللہ رکھے گا. مرنے کے بعد کی زندگی دائمی زندگی ہے, انسان مرتا نہیں ہے, انسان مٹی ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتا, انسان کو اللہ نے ہمیشہ رکھنے کے لیے بنایا ہے. یہ تو منتقل ہوتا ہے, یہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھا, وہاں سے اللہ نے اس کو منتقل کیا ماں کے پیٹ میں, 9 مہینے رکھ کر پھر اللہ نے ماں کے پیٹ سے منتقل کیا دنیا کے پیٹ میں. دنیا میں اس کی زندگی جتنی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے, پھر اللہ اس کو مار کر دنیا سے منتقل کرتا ہے آخرت میں. ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آنے کا نام پیدا ہونا ہے, اور دنیا کے پیٹ سے آخرت میں منتقل ہونے کا مطلب مرنا ہے. پھر آخرت پہ ایک زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم کھا کے فرمایا, والذی نفس محمد بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما بعد الموت الا الجنۃ اب النار, مرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دو ٹھکانے ہیں, یا تو ہمیشہ کی راحت اور آرام اور عزت کی جگہ جنت ہے, یا ہمیشہ کی مصیبت اور خدا کے غضب اور غصے کی جگہ جہنم ہے. ان دو میں سے کسی ایک میں انسان کو جانا ہے, ہر انسان کو. ما بعد الموت الا الجنۃ اب النار, موت کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے, جتنے روشی آئے, جو اللہ کے مخلوق کو بات صحیح سمجھانے کے لیے آئے, ان سب نے اس بات کی خبر دی ہے. کوئی اسے نرک کہتا ہے اور سورگ کہتا ہے. جنت اور جہنم کا نام کسی کتاب میں سورگ ہے نرک ہے, اور قرآن پاک میں اسی کو جنت اور جہنم کہا گیا, اور ہر کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو یا تو سورگ میں جانا یا نرک میں جانا ہے, جنت اور جہنم. اور قرآن نے اور عربی کتابوں نے دونوں راستے دکھائے ہیں کہ تم دنیا میں کیسی زندگی گزارو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور تم دنیا میں کیسی زندگی گزارو گے تو جہنم میں جاؤ گے. چاہے وہ ملک کا صدر ہو یا پوری دنیا کا مالک ہو, یا میرے دوست پوری دنیا کا مالدار ہو یا غریب ہو, ہر ایک کو ان دو ٹھکانوں میں کسی ایک ٹھکانے جانا ہے. اور اس کے لیے بہت سے پہلے کی دنیا کی زندگی ہے. اللہ نے جس کو جس شعبے میں پیدا کیا ہے, جس پوزیشن میں بنایا ہے, اس پوزیشن میں اللہ کا ہر انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ تو میرا بندہ ہے, لہذا میرا بندہ بن کر جینا زندگی گزار, اور تو میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, لہذا تو دنیا میں میرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزار, تو کامیاب ہو جائے گا. تیری دنیا کی زندگی خدا خوشحال بنا دے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو بھی مرد عورت ایمان کی زندگی گزاریں گے, اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر کے, ایمان دل میں اتار کر, اللہ ہی کو سب کچھ کرتا دھرتا یقین کر کے اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے, نیک اعمال کریں گے. ہاں دنیا کی ہر چیز میں آدمی کوشش کر کے اسے نیک عمل بنا سکتا ہے, اور آدمی اپنی غفلت سے اسے اپنے لیے وبال بنا سکتا ہے. ہاں تو نیک عمل, جو بھی مرد عورت اپنے ایمان دل کے یقین کو ٹھیک کر کے اپنے جسم کے استعمال, دیکھو عمل کہتے ہیں انسانی جسم کے استعمال کا نام, پکڑنا عمل ہے, دیکھنا عمل ہے, بولنا عمل ہے, چلنا عمل ہے, سوچنا عمل ہے, تجارت کرنا عمل ہے, حکومت کرنا عمل ہے, شادی کرنا عمل ہے, اولاد کی پرورش کرنا عمل ہے, پڑوسی کے ساتھ زندگی گزارنا عمل ہے, اپنے نوکروں کے ساتھ زندگی گزارنا عمل ہے, سب اعمال ہیں. ابھی عمل دو رخ پر ہے. اگر یہ اعمال جتنے اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو یہ نیک عمل ہے, اور اگر یہ اعمال یہ تمام کام اپنی مرضی کے مطابق کرے گا اللہ کے حکم کے خلاف تو یہی میرے دوستو گناہ ہے اور یہی برا عمل ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو بتایا ہے, فاما من تغا واسر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جو لوگ دنیا میں سرکشی کی زندگی گزارتے ہیں, اتراتے ہیں, گھمنڈ کرتے ہیں, ہاں, اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کر خدا کے احکام توڑتے ہیں, فإن الجحیم هی المأوى, ایسے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے. واما من خافا مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتے ہیں, مجھے تو مرنا ہے اور مر کر ایک دن مجھے میرا خالق و مالک دوبارہ زندہ کرے گا, اور زندہ ہونے کے بعد مجھے اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. واما من خاف مقام ربه, جو لوگ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, ونہى النفس عن الهوى, اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے, اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے, فإن الجنة هي المأوى, وہ تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے, نبی کا کیا طریقہ ہے. ہاں, اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے, فإن الجنة هي المأوى, ان کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بات صاف ہے, ہر مرنے والا کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, کسی زمانے میں ہو, اسے مر کر ان دو ٹھکانوں میں ٹھکانے میں جانا ہے. ہاں, اس لیے بھائیو دنیا کی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے, چیزیں, مال, پیسے, مکانات, جائیداد, یہ تمام چیزیں اس لیے دی ہیں کہ آدمی ان میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے, تاکہ اس کی آخرت کی ہمیشہ زندگی بن جائے. ہاں, اور اگر ان دنیا کی چیزوں میں یہ اپنی مرضی پر زندگی گزار کے جائے گا, دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلے گا اور اپنی خواہشات کے چکر پورا کرنے کے چکر میں زندگی پوری کی اور مر گیا, تو مر کر اسے میرے دوستوں سوائے حسرت اور رونے کے کچھ نہیں ہوگا. ہاں, قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا جہنم کیا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے انسانوں کو ہر بات سمجھائی ہے, جہنم میں کیا تکلیف ہے, کیا کیا عذاب ہے, جنت اللہ کی نعمت ہے, نعمت کی جگہ کیا ہے. قرآن پاک کو کھولیے, قرآن پاک میں اللہ نے جنت کو کھولا ہے, بیان کیا ہے, قرآن پاک میں اللہ نے جہنم کو کھولا ہے, بیان کیا ہے کہ دو ٹھکانے ہیں, ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں تمہیں جانا ہوگا مر کر, لہذا موت سے پہلے اپنی زندگی کو صحیح گزار لو. ایماندار بننا یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ ایماندار بنو. آج انسان, دنیا کا انسان مالدار بننے کے چکر میں ہے, حالانکہ مالدار بننا اس کے بس میں نہیں ہے. وہ تو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر کتنا جیے گا, کتنی راحت پائے گا, کتنی تکلیف پائے گا, مالدار ہوگا یا غریب ہوگا, یہ اللہ ماں کے پیٹ سے پیٹ میں ہی لکھ چکا ہے. اس لیے بہت سے ہیں رات دن محنت کرتے کہ منہ تو کہیں سیٹ تھا تو نہ دیا, دعا کرو عمر صاحب. بہت سے محنت کرتے کرتے میرے دوستوں مالدار نہیں بنتے, اور بہت سے میرے دوستوں آن کے آن میں مالدار بن جاتے ہیں. ہاں, اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں, ہاں, مالدار ایماندار بن جائے گا, مالدار اپنے آپ کو ایماندار بنا کے نکل گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کو عزت دے دے گا. चैन देगा, सुकून देगा, और ये दुनिया भी उसकी खुशहाल बन जाएगी, और दुनिया से जब मर कर जाएगा तो अल्लाह ताला शान हो उसे अपनी रहमत के आगोश में जगह देकर हमेशा हमेशा की जन्नत की नेमतों दाखिल कर देगा। गरीब अपनी गुर्बत, गरीब को मालदार होने की जरूरत नहीं है, मालदार को गरीब बनने की जरूरत नहीं है, हाकिम को महकूम बनने की जरूरत नहीं है, महकूम को हाकिम बनने की जरूरत नहीं है। ये जिस पोजीशन में जहां कहीं है इस बात की कोशिश करे, फिक्र करे कि मैं अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारूं, अल्लाह की मानकर अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजार। अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, पीने से मना नहीं किया, कमाने से मना नहीं किया, खर्च करने से मना नहीं किया, अल्लाह ने मकान बनाने से मना नहीं किया, लेकिन हाँ अल्लाह ने हर चीज के हुक्म इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह ना करो। हदीस में आता है हर इंसान की 5 जरूरतें हैं, खाना पीना, कपड़े लत्ते, मकान, सवारी और बीवी। ये 5 जरूरतें इंसान की, इन 5 जरूरतों को पूरा करने से अल्लाह ने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन हाँ कैसे जरूरत पूरी करनी ये बताया, ये बताया। खाओ तो क्या खाओ, क्या ना खाओ, हलाल खाओ, हराम ना खाओ, हलाल तरीके से कमा के खाओ, हराम तरीके से कमा के मत खाओ। एक तो चीज हलाल है लेकिन तरीका हराम है, तरीका हराम है, तो हराम तरीके से कमा कर खाने से मना है। जुल्म करना, नाप तोड़ में कमी करना, खुदा की मखलूक में दोस्तों पूरा हक न देना। अल्लाह ने हर इंसान को हुक्म दिया है कि जिसका जितना हक है वो अदा करो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम हर हकदार का हक अदा करो। तुमने 100 रुपए लिए हैं और 1 किलो चीज देने का तुमने वादा किया है तो उसे 1 किलो पूरा दो, 1-2 ग्राम 10 ग्राम भी कम मत दो। हाँ हुजूर ने एक बात फरमाई, जिन वर्जे, ज्यादा दे कम मत दे, तोल लेकिन झुकता तोल। अल्लाह ने भी कहा तालीम है, जिन वर्ज है, तोल झुकता तोल, कम नहीं। कम देने वालों के लिए कुरान ने में दोस्तों जबरदस्त बात बताई है, वैलुल लिल मुतफिफिन अल्लजीन जतालु अलन नास यस्तफून वइजा कालूहुम व वजनहुम यखसरून। वैल है, जहन्नम का घड़ा है ऐसे इंसानों के लिए कि जब लेने का वक्त आता है तो झुकता लेते हैं और जब देने का आता है तो लोगों को कम देते हैं। जेन वर्ज है, तोल तोल और झुकता तोल, वो दो नहीं, वो जो झुकता नहीं हो करके डंडी मार के दिया हो तो होता है वो 1.25 किलो, और झुकता है ऐसा 1.25 किलो दिया हो। हम छोटे बच्चे थे उस जमाने में, आनंद पढ़ते थे, पढ़ने के बाद पढ़ने के जमाने में केले लेने जावे और कुछ चीज लेने जावे तो वो ऐसी झुकता तोला के बहुत होगा, वो वहां जाके कम होता है। वो चीज चीज मीठी दिखाने के लिए उस जमाने में वो वजन करने के आए थे, उसके पीछे एक कड्डी होती थी, दो शेर की एक आला वो होता था तोल तोल करने का, तो पीछे एक खड्डी होती थी, तो वो खड्डी उल्टी करके वो खड्डी रखकर उसमें ये जो मीठा होता है ना क्या सैक्रीन, सैक्रीन का पानी अंदर रख के, और जो टेटी वगैरह लेने जावे तो चखाने के लिए वो जो छुरी से जिससे काटना होता है उंगली के साथ वो सैक्रीन लगाकर छुरी के साथ लगाकर काट के दे रहे और खाओ तो मीठा, आधा 5 किलो अब घर जाके खाने तो मीठा क्या फीका, फीके से फीका। ये धोखा है, धोखा है। कपड़ा तो कपड़ा नापने वाला अगर इस नीयत से नापता और खींचता है ताकि एक इंच कम दो अल्लाह क्या इसे पकड़ जाएगा। तुम्हारा नौकर अगर नाप में कमी कर रहा है और तुम्हें इसका अंदाजा है तो खुदा क्या तुम्हारी भी पकड़ होगी। अपने नौकरों को तालीम दो कि कपड़े को खींच कर मत दे। हाँ, बाजे कपड़े खींचे जाते हैं, खींचते हैं तो होता है 39-33-35-35 इंच। हाँ तो ये اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ناپتے ناپ میں تولنے میں ہر جگہ میں دوستو خدا کے احکام ہیں, ان احکام کے مطابق آدمی چلے تو یہی چیز عبادت بن جائے گی. ایمان والے مسلمان کا کوئی عمل دنیا دار, دنیا مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں. مسلمان تو اپنی دکان میں بھی دیندار, مسلمان تو اپنے گھر میں بھی دیندار, مسلمان تو اپنی شادی میں بھی دیندار, مسلمان تو اپنی تجارت میں دیندار. اور یہ حکومت کے کرسی پہ بیٹھ کے بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تو وہاں بھی دیندار. کیا مطلب؟ اگر وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کر اللہ کے حکموں کے مطابق حکومت کرے گا تو دیندار ہے. اور اللہ کے اس کا اتنا مقام ہے کہ یوں آتا ہے, عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین, کہ وہ تاجر وہ بزنس کرنے والا جو سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ بزنس کرے گا وہ تو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہاں, نکاح عبادت ہے, لیکن کون سا نکاح؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, نبی کے طریقے پر ہو, وہ نکاح عبادت ہے. اللہ کے نبی پر نکاح نصف ایمان, نکاح تو آدھا ایمان ہے. لیکن یہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں, ہمارے نکاحوں میں شادیوں میں تو سب کو خوش کیا جاتا ہے, اللہ اللہ کے رسول کو ہی ناراض کیا جاتا ہے. اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ, وہ نکاح اور شادی میں نکاح میں بہت 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 ہی برکت ہوتی ہے جس نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو, تھکنا ہو. سیدھی سادی شادی کرنے سے بھی زندگی گزر جاتی ہے بلکہ برکت کے ساتھ گزرے گی. اور جتنا شادیوں میں خرچہ بڑھے گا اور جتنا شادیوں میں نبی کے طریقے چھوٹیں گے, خدا ان شادیوں کو وبال بنائے گا, برکت نہیں ہوگی. برکت میں سب آئے گا, میاں بیوی کی محبتیں, نیک صالح اولاد کا ملنا, برکت میں روزی کی برکت, ہر چیز کی برکت. میں تو ہمارے جوان بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بچوں, جب تمہارا نکاح کا وقت آئے نا تو تم ماں باپ سے کہنا کہ ہم تو نبی کی سنت پر نکاح کریں گے. تم اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کر کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر تم تو اپنا شوق پورا کر لو گے زندگی بھر, میں پریشان ہوں گا. بغیر برکت کا نکاح کیا کام کا؟ ہاں, اپنے ماں باپ کو یوں کہو کہ تم تو اپنی شوق پورا کر کے چلے جاؤ گے زندگی میں, میرا کیا ہوگا؟ نکاح میں برکت تو ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بات ہے, اعظم النکاح برکت ایسر ہو مؤن, کہ وہ نکاح میں بہت بڑی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے جو نکاح کم سے کم خرچہ ہو, کم سے کم اس میں تھکنا ہو. جن نکاحوں میں رات بے دوست, جن نکاحوں میں نمازیں جائیں, جن نکاحوں میں فضول خرچیاں ہو, جن نکاحوں میں میرے دوستو خدا کے احکام ٹوٹ رہے ہوں, ان نکاحوں میں برکت نہیں ہوتی. پھر دعائیں کرتے رہتے, مزہ دعا کرو چھوکرے بڑے, پر تم نے پہلے ایسا رستہ اختیار کیوں کیا؟ اچھا بھی جھگڑے ہوتے تھے اسی میں, وہ لیور دیور جو ہوتی اسی میں جھگڑے ہوتے ہیں اسی میں, ہاں لیور دیور میں. اچھا سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ نکاح والے اپنے بچوں کو بیچتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں, سوال ہے. اور آج بھی اس دور میں بہت سی قومیں لڑکیوں کو زندہ مار ڈالتی ہیں. آج بھی ہمارے بچپنے کا زمانہ تھا, جب ہم 10-12 سال کے تھے, آنند میں پڑھتے تھے, تو ہمارے آگے ایک معاملہ دار تھے. وہ معاملہ دار وہاں پر ضلع میں उनकी नौकरी थी, तो उन्होंने हमको बताया कि मर्द साहब यहाँ इस इलाके में अभी भी बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को दूध पीती कर देते हैं। तो क्या दूध पीती मतलब क्या कि मौलवी साहब ये बच्चों को जिंदा नहीं रखते, जब बच्ची पैदा होती है तो बड़े पतीले में दूध भरते हैं और उस दूध में फिर उस बच्ची को डुबोते हैं, वो पीते पीते मर जाती है। अभी तुम्हारे तुम्हारी हुकूमतों में ना कि छोकरी जी के छोकरों ये बताओ तो तुमने ढंग थे से, अरे है कि नहीं, तुम तो मौली लोग हो, तुम सब जानते हो क्या है। इसलिए कि लड़की नहीं है तो उसी वक्त उसका काम कर देते हैं, गिरा देते हैं। ये जो आजकल मेरे दोस्तों बच्ची बचाओ छोकरी बचाओ छोकरी बनाओ, क्या है क्या ये, इसी का है। लड़कियों को लोग पसंद, लड़कियों को क्यों पसंद नहीं करते हैं कि एक लड़की के शादी में 2 लाख रुपए कहां से लाने, 5 लाख कहां से लाने। जिस निकाह और शादी को अल्लाह के नबी ने इतना आसान किया है कि जिसमें कोई खर्चा नहीं है। इस्लाम में निकाह किसको कहते हैं, इस्लाम में निकाह इसको कहते हैं कि किसी लड़की के साथ किसी बच्चे का निकाह हो रहा हो तो उसकी मेहर तय करोगे, मेहर कितनी, और मजलिसी निकाह कायम करो और लड़की को निकाह के लिए तैयार करो, लड़के को निकाह के लिए तैयार करो। अगर ये दोनों खुशी से तैयार हैं तो लोगों के बीच में लड़के को इजाब व कबूल कराकर उसको उसकी उसके निकाह कर दो, ये हमारा निकाह हो गया। न मंडप है न रोशनी है, हमारे यहां तो निकाह मस्जिद में सुन्नत है। हाँ, निकाह हो गई, ये मेहर है निकाह में और इजाब व कबूल है। और मस्जिद से निकाह इसलिए है ताकि लोगों को अंदर खबर हो जाए कि ये लड़का और लड़की का आपस में निकाह हो गया है, बस बाकी सब तुम्हारी मर्जी पर है। अगर तुम्हें वलीमा करना तो वलीमा भी कैसा, वलीमा कोई धम धड़ाका वाले नहीं होता हमारे यहाँ, आदमी की जैसी हैसियत। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक मतलब आपका निकाह हुआ तो आपने सहाबा से कहा हर एक अपने घर से खाना ले आओ, तो सब खाना ले आए और कहा बैठ के खा लो, सबने बैठ के खा गए, तुम्हारे तुम्हारे तो तुम्हारी अम्मी का ये वलीमा है। नबी के घर की औरतें तो हमारी माए हैं। ये अभी आपने वलीमा क्यों किया, कभी आपने वलीमा अपनी हैसियत के एतबार से किया, कभी आपने वलीमा मेरे दोस्तों आपने अच्छा वो भी किया। लेकिन वलीमा में, और देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वो वलीमा बदतरीन वलीमा है जिसमें मालदारों को दावत दी जाए और गरीबों को भुलाया जाए। वलीमा जहाज जहाज का कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारी हैसियत है कोई नहीं है। लेकिन जब शादी मुश्किल होगी, जितना निकाह और शादी मुश्किल ये सब पैदा हो, ये सब बातें आएंगी, बच्चों को मारना, बच्चों के पैदा ना होने देना, या फिर मेरे दोस्तों ये तमाम चीजें कि फिर निकाह देर से होंगे और फिर मेरे दोस्तों माहौल में गुनाह के काम जिंदा होंगे। यूं कहते हैं जिस कौम में निकाह और शादी महंगी होगी उस कौम में जिनाकारी आसान होगी। एक आदमी भूखा है तो भूखे को खाना चाहिए नहीं चाहिए, भूखे को खाना चाहिए। एक आदमी के अंदर की ख्वाहिश खुदा ने रखी है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके बीवी चाहिए। अब जब माँ बाप उसका निकाह नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे, तो वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगा। जिस कौम में निकाह और शादी महंगी उस कौम में जिनाकारी आसान, और जिस कौम में निकाह और शादियां आसान हो जाएंगी उस कौम में ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए भाई मेरे अजीजों, एक जिंदगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए लाए हैं। इस्लाम किसी कौम का मजहब नहीं है, इस्लाम आसमान वाले मालिक और खालिक ने अपने मखलूक और बंदों को दुनिया और आखिरत की सहूलत और आसानी जिंदगी देने के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दीन देकर भेजा है, इसका नाम इस्लाम है। इस्लाम किसी कौम का मजहब नहीं है, मुसलमान किसी कौम का नाम नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खल्क इयादुल्लाह, दुनिया में जितने इंसान हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह का कुटुंब और कबीला है, आयाल है। तो अल्लाह ने अपनी आयाल को दुनिया और आखिरत की खूबी और भलाई देने के लिए जो जिंदगी गुजारने का तरीका देकर हजरत रसूलुल्लाह सासों को भेजा है वो सबके लिए है, सबके लिए, ताकि मेरी आयाल दुनिया में राहत और आराम और खुशहाल जिंदगी गुजारे और मौत के बाद की हमेशा की जिंदगी में कामयाब हो जाए। इसके लिए अल्लाह ने दीन इस्लाम को लेकर हुजूर को भेजा है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाया है कुरान पाक में कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ दुनिया के लोगो, दुनिया के तमाम इंसानों से आपका ऐलान है, ऐ दुनिया के लोगो, मुझे अल्लाह ने तुम सब की तरफ रसूल और पैगंबर बना के भेजा है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, तुम सब की तरफ, काले गोरे यूरोपे रेशन सब सबके लिए। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ध, वो अल्लाह जिस जो मालिक है आसमान और जमीनों का, ला इलाहा इल्ला हु, उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, उस अल्लाह के सिवा कोई पूजा के काबिल नहीं है, उस अल्लाह के सिवा कोई सजदे के काबिल नहीं है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा किसी की बात नहीं मानी जाएगी, वही काबिल इताअत है। यही वही मीन वो अल्लाह ही इंसान को जिलाता है और वो अल्लाह ही उसको मारता है। जिस अल्लाह के हाथ में इंसानों की मौत और हयात है, मौत और हयात का मालिक एक अल्लाह है, और जो अल्लाह मौत और हयात का मालिक है तो मौत और हयात के बीच में जितने हालात आते हैं इंसानों पर उसका मालिक भी एक अल्लाह ही है। इसलिए भाइयों एक जिंदगी है जिस जिंदगी को अपने अंदर लाना जरूरी है। खुदा की कसम इंसानों की परेशानियां और इंसानों की जिंदगी में जो तंगियां आई हैं उसका हल सिवाय अल्लाह के दीन के और कुछ नहीं है। आज दुनिया के इंसानों के पास क्या नहीं है, माल पैसे कौड़ियां दुनिया की राहत आराम के नक्शे और चीजें, ये सब के सब इंसानों के पास मौजूद होते हुए आज का इंसान जितना परेशान है इसी जमाने में इतना परेशान नहीं था, और आज का इंसान जितनी खुदकुशी कर रहा है किसी जमाने में इतना खुदकुशी करता नहीं था, और जिन मुल्कों में जितनी दुनिया की मेरे दोस्तों तरक्कियां हैं उसमें इतना ही इंसान खुदकुशी ज्यादा कर रहा है। इंसान पागल बन रहा है, पागल अपने दिमाग से, क्यों कि इंसानों ने अपने पैदा करने वाले के बताए हुए तरीके से अपने आप को हटाया है। हाँ अल्लाह ने उनको, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और पैदा होने के बाद इन्हें जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है। अगर इंसान इससे हटेगा तो परेशान होगा, होगा नहीं होगा, अरे बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं हो, चार चार प्यारे वाली गाड़ी जिसने बनाई है उसने बनाने के बाद उस गाड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, क्या आ गाड़ी रोड पर चल से, आ गाड़ी आम चाल से, तरीका बताया उसको। कोई बेवकूफ ऐसा कहे कि गाड़ी महरी से पैसा मारा चाहे मूँ लाया छो हूँ एना एना क्या होगा क्या चालू, अब 12 लाख की गाड़ी पीटी पैक लाया उसको चलाना चाहिए रोड पर और लेके गया खेत में, अब खेत में जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, क्यों कि बनाने वाले के कहने के मुताबिक गाड़ी चलाई नहीं, परेशान होगा ये। ऐसे ये इस मशीन को किसने बनाया है? ये मशीनों की जो मशीन इंसान है, उस इंसान को किसने बनाया? अरे बोलो, एक अल्लाह ने बनाया है, तीन अंधेरों में बनाया है, माँ के पेट का अंधेरा, माँ के रहम का अंधेरा, और जिस झिल्ली के अंदर अल्लाह ने उसको बनाया, वो तीन अंधेरे हैं, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। उस अल्लाह ने इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। आंखें हमने दी हैं, इन आंखों को कैसे इस्तेमाल करोगे? गाड़ी वाले ने दो आंखें रखी हैं आगे लाइट, उसको कैसे इस्तेमाल करना वो बताता है। हाँ, आमने सामने हो तो डिम कर दे, वरना दोनों की लाइट आपस में जब टकराएगी तो मरोगे। रात को सिलगा, दिन में नहीं। हाँ, उसका तरीका है, स्ट्रिंग दी है कि स्ट्रिंग के भी तरह तो जहां मुड़ने का वही मोड़ियो, और अगर मुड़ने के जाग तुमने नहीं मोड़ा तो गड़े में जाके मरेगा। एक्सीडेंट कैसे कब इस्तेमाल करना? हाँ, ब्रेक कब इस्तेमाल करना? और गाड़ी चलाते चलाते दोनों तरफ देखना, तो शीशे लगाते यूं क्यों? कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। पेट्रोल की जगह पेट्रोल भरता है, ऑयल की जगह ऑयल भरता है, क्यों? बनाने वाले ने बात बताई है। ऑयल की जगह पेट्रोल भरता है कोई? नहीं। टायर में इतनी हवा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो उसका उसके कहने के मुताबिक अमल करता है वो। तब ये मेरे दोस्तों गाड़ी से, ये कौन सा काम है, जैसल से अमरेली पहुंचना हो तो पहुंचेगा, नकद बनाने बताने वाले के कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो अमरेली नहीं पहुंचेगा, कब्रस्तान पहुंचेगा। तो जब इंसानों की मशीन गलत इस्तेमाल करने से इंसान परेशान होता है, तो अल्लाह की बनाई हुई मशीन, उस मशीन के इस्तेमाल का तरीका अल्लाह ने अपने नबी के जरिए इंसानों को बताया है। अगर ये इंसान अपनी इस मशीन को अल्लाह के फरमान के खिलाफ चलाएगा तो ये परेशान होगा, चाहे मालदार हो या गरीब हो। बात समझ में आ रही है? और आगे चलो, ये तुम्हारा जिला है, कौन सा जिला है? ये अमरेली जिला के हाकिम है, गवर्नमेंट के लोग हैं, ये गवर्नमेंट का एक जिला है। गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में रहने के कानून बनाए, अगर उस कानून की रियायत के साथ आदमी हिंदुस्तान में रहेगा तो चैन सुकून से रह सकता है। और अगर इस हिंदुस्तान में ये मेरे दोस्तों सेठ है, और मेरे दोस्त नगर सेठ है, लेकिन नगर सेठ होने के बावजूद और इसके पास सब कुछ है, मालदार भी है, घर भी है, बंगले भी हैं, गाड़ियां भी है, लेकिन गवर्नमेंट की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट में है, बताओ ये चैन से रह सकता है? अरे बोलो ना, नहीं। क्यों? गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ जी रहा है इस मुल्क में, हालांकि ये तो अल्लाह की दी जमीन इनको दी गई है। जब इनके कानून के खिलाफ वर्जी करने वाला चैन से नहीं रह सकता, तो ये जमीन और आसमान का हकीकी मालिक तो अल्लाह है, और अल्लाह ने इस दुनिया में जीने का तरीका अपने नबी के जरिए बताया है। और फिर ये इंसान जब खुदा की धरती पर रहकर अल्लाह को नाराज करेगा और अल्लाह से बगावत करेगा, तो ये इस धरती पर चैन से कैसे रह सकता है? बस मसला एक ही है, दुनिया के हाकिमों की सजाएं जाहिर में दिखती हैं, और अल्लाह की सजा जो है गैबी है, गैबी माल। अल्लाह का होता है गैबी माल, और गैबी माल बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओमन आवाज़ दिक्री फ़ाइन लहू मईशतन बनका, जो भी हमारी इताअत का रास्ता छोड़ेगा, नमाजें छोड़ेगा, झूठ बोलेगा, खुदा की मखलूक पर जुल्म करेगा, मेरे नबी के बताए तरीके को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा, मैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। अब वह ऊपर से जिंदगी तंग है, घर में जाए तो चैन नहीं, कारोबार में जाए तो चैन नहीं, दोस्तों में जाए तो चैन नहीं, तंग जिंदगी। अल्लाह कह रहे हैं उमन आरोदान दिगरी फाइनल हो मैशत और नंग का, जो भी हमारे इताअत से एराज करेगा हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। आज जिंदगी क्या तंग है आज, इसीलिए लोग खुदकुशियां इसीलिए कर रहे हैं, क्या भी देखते हैं मेरे पास राहत आराम के इतने नक्शे हैं, इतना पैसा है, इतना चीजें हैं, और मुझे चैन नहीं, सुकून नहीं, तो क्या करना, क्या मर जाओ, सब कुछ होते ही मैं चैन नहीं तो क्या है, कबर हो तो आदमी खुदकुशी कर लेता है। खुदकुशी करने वाले मेरे दोस्तों आदिवासी नहीं होते, मजदूरी करना नहीं होते खुदकुशी करने वाले, खुदकुशी करने वाले तो मेरे दोस्तों दुनिया में बड़े बड़े दुनियादार होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो खुदकुशियां करते हैं, इनके पास दुनिया है, लेकिन सब कुछ होते हुए चैन सुकून नहीं है, और चैन सुकून का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। इसलिए मेरे दोस्त हम ये कह रहे हैं तुम्हारी गाड़ियां नो एंट्री में जा रही है, इस नो एंट्री के रास्ते से एंट्री रास्ते पर आ जाओ तो तुम परेशानी से निकल जाओगे। एक आदमी 12 लाख की गाड़ी और जन्नत की हूर जैसी बीवी और चांद जैसी औलाद और गाड़ी में सब खाने पीने के सामान और निकला, और निकल के चलते चलते आगे शहर था पता नहीं चला और नो एंट्री रास्ते में घुस गया, और इसकी बीवी ने अरे क्या किया कि क्या हुआ, नो एंट्री रास्ता है। जब ये नो एंट्री अंदर सुनेगा तो अंदर के 80 मिनट तो अभी पुलिस आएगा, अभी ट्रैफिक, अभी पकड़ा जाऊंगा, अभी, हालांकि गाड़ी में सब सुकून चैन के असबाब मौजूद हैं, बीवी भी है, बच्चे भी है, खाना भी है, पीना है, लेकिन नो एंट्री वे में घुसने के साथ इसके दिल का इत्मीनान खत्म हो जाता है। जब तक नो एंट्री वे से निकलकर एंट्री वे में दाखिल नहीं होता वहां तक इत्मीनान, अरे होता है बोलो, नहीं होता। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी गुजारने के एंट्री वे नो एंट्री वे दोनों है, हलाल एंट्री वे, हराम नो एंट्री वे, यहां जाओ यहां मत जाओ, लेकिन हमारी जिंदगियां नो एंट्री वे में जा रही है, इसलिए सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, गाड़ी को रिवर्स लो, रिवर्स रिवर्स लो, क्या है, अपनी ख्वाहिशात से दुनिया के नादानों के पीछे चलने के बजाय अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ अपने आप को लाओ और हुदूर वाली जिंदगी को इख्तियार कर लो। जिस दिन अपनी जिंदगी के को ठीक कर लोगे उसी दिन आसमान से जिंदगी बनाने का फैसला रहेगा, वरना मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए भाई ये मेहनत है, हमें इस मेहनत को कहा, देखो दुनिया बगैर मेहनत की भी मिल जाती है, आज दुनिया में अक्सरियत बगैर मेहनत के खा रही है, हमारे बच्चे कहां मेहनत करने जा रहे हैं, हमारी घर के लोग मेहनत करने नहीं जाते, हम मेहनत करके लाते हैं, खाते ही हैं छोटे बच्चे, और हमसे अच्छा खाते हैं, हम तो कम दुकान से आते हैं शाम को और दोपहर को भी हमारी दुकान पर खाकर टिफिन आता है तो कब रोटियां ठंडी हो जाती हैं, और हमारे बच्चे बगैर मेहनत के तवे से उतरती रोटी खाते हैं, गरम गरम रोटी, हम खाने बैठते हैं तो जो नरम बोटी होता है हम बच्चे को देते हैं, ले खा, बगैर मेहनत के खा रहे हैं सब, किसी को पूछो हाई साहब तुम्हारा तो एक बंगला है इतना तो काफी है, कि दो बंगले दूसरे कैसे बना रहे हो, कि दो छोकरे हैं अभी उनको पता भी नहीं, उनको तो वो तो खेल रहे हैं और अपना उनकी फिक्र कर रहे हैं कि बंगले बनाने के तैयार रखे, बगैर मेहनत के दुनिया नहीं मिलती, ना मिलती है, लेकिन दीन दीन बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा, ہدایت بغیر محنت کے نہیں ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں محنت مجاہدہ کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. آج ہم نے الٹا کر دیا ہے, جس دنیا کو اللہ نے اپنے ذمہ میں لے رکھا ہے, قرآن میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ارے میرے بندو تمہارے سوا کتنے جانور ہیں, ان جانوروں کو بھی اللہ پالتا ہے, تم کو بھی اللہ ہی پالتا ہے. یہ جانور اپنی روزی اپنی پیٹ پر لے کے پھرتے نہیں ہیں کہ کوئی بکری اپنا دکان کھولتی ہے, کوئی جانور شیر میں دوستوں کو فیکٹری کھولتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ شیر کو روزانہ تازہ تازہ گوشت کھلاتا ہے, کہتے ہیں شیر باسی نہیں کھاتا, ہر روز شکار کرے گا اور کھائے گا اور باقی چھوڑ دے گا دوسروں کے لیے. اسی لیے دوسروں بادشاہ کہتے ہیں, جنگل نو راجا ہے, جنگل نو راجا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہاتھی کو من کھلاتا ہے اور چوٹی کو کن کھلاتا ہے. چوٹی کو کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے, اس کو بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وہ کائی دعبت اللہ سے ہم نے, ارے میرے بندوں یہ سب جانور چپرندے چرندے سب پھر رہے ہیں, وہ اپنا روز ان کی روزی لے کے پھرتے نہیں ہو. اللہ یرزقھا ویاکم, ان تمام پرندوں کو چرندوں کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے اور تم کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. کون دیتا ہے بولو؟ اللہ. تو ہمارا دنیا کی ضرورتوں کا انتظام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے, باقی ہم کو اللہ نے دنیا کے لیے محنت کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ امتحان کے لیے, کہ یہ میرے کہنے کے مطابق دنیا میں محنت کرتے ہیں یا شیطان اور شیطان کے جتنا گروپ ہے ان کے کہنے کے مطابق دنیا میں چلتے ہیں. یہ اللہ کا امتحان ہے. ہاں وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. باقی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت تو جتنی تم میرے نبی کی نقش قدم پر محنت کرو گے میں تمہیں ہدایت دیتا جاؤں گا. ایمان, ایمانی زندگی, اندر کی طاقت, تقوی, توکل, اور میں تو خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ, ایثار و ہمدردی, حیا, شرم, عفت اور پاکدامنی, یہ سب کچھ میرے دوستوں زندگیوں میں آتا ہے حضور والی محنت کے ذریعے. اس میرے بھائیو آپ وجہ سے گزارش ہے, موت سے پہلے کرنے کا وقت ہے, موت کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا. جو لوگ اس دنیا کے پیچھے اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنی تمام طاقتیں خرچ کر رہے ہیں یہ موت کے وقت حسرت کے ساتھ جائیں گے. کیوں؟ کہ دنیا کے پیچھے محنت کی اور یہ دنیا جمع کی اور موت آئی تو دنیا یہیں چھوٹے گی, اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے فکر نہیں کی ہے تو یہاں سے حسرت کے ساتھ جائیں گے. اور جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنے دین کو بنایا, اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں اپنے دین کو آخرت کو سامنے کی زندگی گزاری ہوگی, یہ لوگ میرے دوستوں دنیا سے خوش ہو جائیں گے. ان کی دنیا بھی خدا بنا دے گا, آخرت بنا دے گا. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. یہی فرق ہے ایمان والوں میں غیر ایمان والوں میں. ایمان والا اپنی دکان میں اپنی آخرت کو سامنے کر چلتا ہے کہ میری آخرت برباد نہ ہو, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں غلط نہیں کروں, میری آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے, میرے کاروبار میں میری نماز میں نہیں چھوڑوں گا, میری آخرت نہیں برباد ہوگی اور میری آخرت کے ساتھ میں جاؤں گا. مسلمان اپنے کاروبار میں, اپنی نوکری چاکری میں, ہر جگہ یہ اپنی آخرت کو سامنے کے چلتا ہے. آخرت بنے گی تو اس کی دنیا میں خدا بنا دے گا. اور جو بھی دوست جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اپنی دنیا ہی کو حاصل قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس دنیا ہے اور دنیا ہی کو حاصل کرنے کے چکر میں نہ حلال دیکھتے ہیں, نہ حرام دیکھتے ہیں, نہ میرے دوست ظلم دیکھتے ہیں, نہ انصاف. ہمیں تو دنیا چاہیے. یہ فرق ہے میرے دوستو. ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اس کو سیکھیں, سمجھیں اور پھر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو اللہ ہماری دنیا بنائے گا, آخرت بنا دے گا, اور ہماری صحیح محنتوں کے نتیجے میں دنیا میں خیر پھیلے گی. ایمانداری, عدل و انصاف, خیر خواہی, ہمدردی, یہ ایمان کی محنت کے ذریعے انسانوں میں آنا شروع ہو جائے گی, جس کی بنا پر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. امن و امان قائم ہونے کا راستہ ایمان ہے. سلامتی اسلام سے آئے گی. जब इस्लाम जिंदगी में आएगा, जिंदगी में सलामती आएगी, हर इंसान की जान माल इज्जत आबरू सब महफूज हो जाएंगे। और ईमान जब आएगा, खौफ खुदा और अल्लाह की बड़ाई अजमत दिलों में आएगी, तो दुनिया में अमन अमान खुदा कायम कर देगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान वाले हैं और उनका ईमान साफ सुथरा है, उसमें जुल्म की मिलावट नहीं है, शिर्क की मिलावट नहीं है, गुनाहों की मिलावट नहीं है, खालिस ईमान है, अल्लाह उन्हीं को अमन देगा। अमन इनके लिए है। अमन का फैसला ऊपर से आता है, हाँ, सलामती का फैसला ऊपर से आएगा, हाँ। सलामती और अमन अमान किसी दुनिया वालों के हाथ में है नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरा अजीज हो, एक मेहनत है, बयान नहीं है साथ, बयान तो एक बेदों से वक्ती तकाजा है, वरना असल तो मेहनत है। हमारी जान, हमारा माल, ये दो चीजें अल्लाह दे रखी हैं। इंसान की जान और माल इंसान जहां लगाता है, इंसान वही हासिल करता है। हमारा बच्चा, मेरे दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी कॉलेज में जाता है? मेडिकल, मेडिकल कॉलेज में जाता है, और वहां अपनी जात से वहां की किताबों को पढ़ता है, वहां रहता है और माल खर्च करता है, तो चंद दिनों के बाद वो डॉक्टर बन के निकलता है। और हमारा दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तो वहां अपनी जात से इंजीनियरिंग में मेहनत करता है, तो इंजीनियर बनता है। और अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा हमारे हमारे हाथों से निकल कर चोरों और डाकू के साथ चला जाता है, तो चोर डाकू बनता है। जहां इंसान का जिस्म लगेगा और जहां इंसान की जान और माल सलाहित लगेगी, इंसान वही बनता है मेरे दोस्तों। इसी तरह हमारी जान, हमारा माल अल्लाह के दीन की मेहनत में लगेगा, नबी वाली मेहनत में लगेगा, तो अल्लाह ताला हमारे अंदर वो सिफात पैदा करेगा, वो ईमानी सिफात, वो अखलाक, वो जिंदगी में अल्लाह की अब्दियत वाली जिंदगी हमारे अंदर पैदा होगी, और हमारे जरिए मेहनत के जरिए दुनिया के इंसानों खुदा इसको जिंदा करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में इसे तरतीब बनाओ, मैं बनूँ। देखो, याद रखो, हम मौत से गाफिल हैं, मौत हमसे गाफिल नहीं है। मौत रोजाना करीब आ रही है, मौत रोजाना करीब आ रही है, और एक दिन मौत हमें पकड़ लेगी। मौत के आने से पहले पहले मौका है बनने का, मौत से पहले पहले मौका है खुदा से माफी और तौबा करने का, कि अल्लाह गफलत में जिंदगी गुजरती है, माफ कर दे, और अपनी जिंदगी के रुख को ठीक करने का। यू आता कमाता ही होना तमोतोन, जिन फिक्रों के साथ, जिन जज्बात के साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, इसी हाल में तुम मरोगे। और कमाता मोतू न तुम आसोन, जिस हाल में मर के जाओगे उसी हाल में उठाए जाओगे। इसी मेरे भाई मेरे अजीज हो, हम और आप अल्लाह के नबी वाली मेहनत करते करते मरेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें आखिरत में इसी हाल में उठाएगा। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी की तरतीब बनाओ। अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि भाई दोस्तों, अपनी जिंदगी के निज़ाम में जहाँ सब कुछ तुमने दाखिल किया है, दुकान, कारोबार, बीवी, बच्चे, खानदान, ये सब तुम्हारी जिंदगी के प्रोग्राम में दाखिल है, इन सब के लिए मौके महल के एतबार से वक्त निकालते हो, जाते हो, अपने कारोबार करते हो, अल्लाह के दीन को भी अपनी जिंदगी के प्रोग्राम में दाखिल करो। मैं मुसलमान हूँ, दीन इस्लाम का मुझ पर हक है, हाँ। मैं हुजूर का उम्मती हूँ, मेरे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, आप वाली जिम्मेदारी और आप वाले फिक्र हम सब के जिम्मे अल्लाह के नबी ने किया है, लिहाजा मुझे मुसलमान बनकर जीना है, नबी का उम्मती बनकर जीना है, इसके लिए अपनी जिंदगी का प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए बुजुर्गों ने क्या कहा? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, कम से कम रोजाना इस ईमान की मेहनत में, दीन की मेहनत में, अपनी जिंदगी में ईमान को पानी पहुंचाने के लिए, अल्लाह का ताल्लुक पैदा करने के लिए रोजाना 2.5 घंटे घर घर जाकर एक एक मुसलमान को ईमान की दावत दो, आखिरत याद दिलाओ, और आमाल और आमाल वाली जिंदगी पर खुदा क्या देगा और गलत जिंदगी पर क्या होगा, ये उसे बैठ कर समझाओ, सिखाओ, और उसे कहो भाई ये जिंदगी अपने अंदर लाने के लिए एक मेहनत है, इस मेहनत में अपने आप को लगाओ, उसको उसको मस्जिद में लाओ, मस्जिद वाले अमल में जोड़ने की कोशिश करो, और अल्लाह की राह में निकलने की तशकील करो। ऐसे हर हर घर पर जाकर रोजाना 2.5 घंटे हम निकाले, 2.5 घंटे 24 घंटे का दसवां हिस्सा है, 24 घंटे का दसवां हिस्सा 2.5 घंटे है अल्लाह के दीन की खातिर अपने मोहल्ले के एक एक मुसलमान भाई की जिंदगी में अल्लाह का दीन आए, दीन की मेहनत आए, इसकी फिक्र लेकर घर घर जाके मेहनत करना। और मेरे भाइयों, महीने में 27 दिन कारोबार करो, हलाल पाक तैयब रोजी कमाओ। हाँ, अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हलाल रोजी ही तय की है, हराम तय नहीं किए है। झूठ है ये कि मेरी मुकद्दर में हराम रोजी बिल्कुल नहीं है, तेरी मुकद्दर में हलाल ही रोजी है, लेकिन शैतान तुझे धोखा देकर जल्दबाजी करवाकर तुझे हराम की तरफ ले जाता है। तेरा तो यकीन तकदीर पर है, तकदीर पर तेरा ईमान, और फर्ज है तकदीर पर ईमान लाना कि मेरे लिए जो कुछ होना है वो अल्लाह लिख चुका है, मेरी मुकद्दर की रोजी हलाल खुदा लिख चुका है, वो मुझे देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन हम और आप में दोस्तों, हजारी के बारे में आता है, एक बार हजारी जा रहे थे रास्ते में सफर में, नमाज का वक्त हो गया, एक मस्जिद करीब में आई तो वहां नमाज पढ़ने की सोचा और एक आदमी से कहा, ये हमारा घोड़ा है, इस घोड़े को आप रखिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तो नमाज पढ़ने की तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ी और बाहर निकले तो घोड़ा नहीं था। अच्छा, नमाज पढ़ के निकलते निकलते दिल में बात आई थी कि इस बेचारे ने मेरे घोड़े को संभाला है, मैं उसे 2 दिरहम दूंगा, दिल में एक बात आई थी। देखा तो है ही नहीं, देखा तो घोड़ा तो एक दरख्त के नीचे खड़ा है और जीन उस पर है नहीं। तो खैर, जीन जीन के लिए वहां करीब बाजार था, बाजार में गए तो वहां गए तो हजारी की जीन एक दुकान पर थी, उसके पास गए, भाई ये बेचोगे? कहां बेचेंगे, कितने में? 2 दिरहम में। जीन ले ली, घोड़े पर आया, कब आदमी ने जल्दी कर दी, अगर थोड़ा सबर कर लेता तो हराम से नहीं मिलता, हलाल से मिलता, मिलने वाला था ही। तो शैतान जल्दबाजी में हराम से ले जाता है, बेसबरा कर देता है, आम जी हम, अरे नहीं होगा तो रहने यार, वो हराम तरीके से कमाते कमाते भी बहुत सोने दीवारा निकाला है, बैंकों से पता नहीं कहां कहां से ला ला कर धंधे बढ़ाए और बाद में हाथ मुझे किए हैं, तो ऐसा नहीं है। सही जिंदगी बनाओ, अल्लाह को नाराज करना अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों अपनी जिंदगी को सही रुख पर लाने के लिए 4 महीने मांगता हूं, महीने के 3 दिन हम लगाए हैं। हाँ, साल का दसवां हिस्सा चिल्ला है, साहबा की जिंदगी की तरतीब मिलती है कि हजरत साहबा साल में 4 महीने अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में निकालते थे। हम ऐसे थोड़े मुसलमान हैं, कुछ लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को खपाया है, जिसके नतीजे में हमें इस्लाम मिला है। ये इस्लाम हमारे अंदर बाकी रहे, दुनिया के इंसानों को इस्लाम मिलता रहे, इसके लिए अल्लाह के नबी वाली नकल हरकत की मेहनत है। इस नकल हरकत में हम अपने आप को लगाएं, साल में कम से कम एक मरतबा जिंदगी में 4 महीने तो लगा लो साहबा की मुशावत इख्तियार करते हुए, फिर अल्लाह तौफीक दे हर साल 4 महीने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस दुनिया में बहुत से जो हर साल 4 महीने लगाते हैं, अल्लाह उनको पालता है, अल्लाह ने तो रोजी अपने जिम्मे ले ली है। अगर 8 महीने मेहनत करोगे तब भी अल्लाह 12 महीने की रोजी तुमको दे देगा, बरकत के साथ देगा। देखो तो मुकद्दर की रोजी हलाल में मिलेगी, लेकिन अल्लाह को राजी करके लोगे तो अल्लाह मुकद्दर की रोजी खुश होकर देगा, बरकत के साथ देगा और दुनिया रहमत बनाकर देगा। अगर अल्लाह को नाराज करके लोगे तब भी मुकद्दर की रोजी अल्लाह देगा, नाराज होकर देगा, लोग चलो बगैर बरकत के देगा और इस दुनिया को गोबाल बना के देगा। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिम्मा ली यकून अलैया वबालन, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे माल से पना मांगता हूं जो मेरे लिए वबाल बने। वबाल है, वबाल है, आज दुनिया वबाल बनी हुई है, ज्यादा आए तब भी मुसीबत, कम आए तब भी मुसीबत। हाँ, दुनिया में अल्लाह ने इंसानों के लिए वबाल वबाल बनाया है कि इतना रखते घर में रख सकते नहीं तुम्हारी, तुमने तुम्हारा माल है पैसे, लेकिन घर में नहीं रख सकते। कम ज्यादा रखोगे तब भी जेल में जाओगे, तो घर में रख नहीं सकते, जेब में लेके फिर नहीं सकते, बैंक में रख सकते नहीं, न किसी को बता नहीं सकते। करना क्या सिवाय परेशान कुछ भी नहीं। और फिर आजकल तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते कि कब लेके भाग जाओ। इसलिए आजकल के इन्वेस्टमेंट में मेरे दोस्तों 2-5 लाख तो होते नहीं, करोड़ों का मसला होता है, करोड़ों के ले और लेके भी भागे, मुल्क छोड़ के भाग गए, क्या कर देगा। अच्छा इंसान यू भी लालची है, एक पत्ता ठोकर खाता फिर भी जाता है, वो कहता है 5,000 आपको तो दर महीने 500 वर्ष है, 500 दर महीने लो, फिर बीवी का जीवन देश के कर लो। अब वो तो 4-5 मरतबा वक्त पर पहुंचा तो देता है, लेकिन जब उसकी एक तरतीब इतना होना चाहिए, जब इतना हो जाता है फिर रसीद दिए बगैर भागता है, फिर क्या कहता है, अब दुनिया माहौल था ऐसा था ही चलता है, तो तू तुझे करू क्या। एक आदमी तुमको कह रहा है कि 5,000 में 500 दूंगा हर महीने, तो कोई कोई अकल में आने वाली बात है। 10% में धंधे मानस का तो बहुत सालों से 10%। लेकिन मेरे दोस्तों इंसान लालची है, हिर्स है, दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए आदमी हर लाइन से आदमी अंधा हो जाता है। और ये भी बात है तो नसुल्लाह फांसा मनफसा, जब आदमी अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह इसे अपनी तमाम चीजें भुला देते हैं। मत इसलिए भाइयों अब से गुजारिश अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को बदलो, खुद अपने आप को नबी वाली मेहनत में लगाओ, नबी वाली मेहनत से दीन हमें भी बाकी रहेगा, हमारी औलादों में रहेगा, और दुनिया में दीन जिंदा होगा, और अल्लाह इस दीन की बरकतों से हमें माला माल करेगा, दुनिया में दीन के रास्ते से इज्जत देगा, अमन अमान देगा, सलामती देगा, और मेरे दोस्तों आखिरत में मजे ही मजे हमें अल्लाह दे देगा। सब तैयार हो, 4 महीने एक मरतबा लगाओ पहले तो, 4 महीने तबलीग की कीजिए है, इसके बाद आगे हाई स्कूल है, फिर साल का चिल्ला है, महीने के 3 दिन है। हाँ 4 महीने एक मरतबा लगाने के बाद अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तेरे नबी वाली मेहनत तो मुझे कबूल कर ले। अगर अल्लाह कबूल कर ले हर साल 4 महीने के लिए तो 4 महीने लगाइयो, अगर अल्लाह कबूल कर चिल्लेगे तो हर साल चिल्ला लगाइयो, महीने के 3 दिन लगाइयो, अपनी मस्जिदों में मस्जिद वाली मेहनत में जुड़ियो। और मैं तो अपनी नमाजों का अहतमाम, जिक्र तिलावत का अहतमाम, नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने का अहतमाम, इसके साथ दुनिया में अगर जियो हो गए तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह दुनिया भी तू सुकून जिंदगी देगा, मरने के बाद भी खुदा मजे मजे की जिंदगी देगा। इसलिए मेरे भाइयों अब देखो हमारे पास आपको हम 15 मिनट देते हैं, अभी 8:15 बजे हैं, 8:30 तक हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन ये 15 मिनट क्यों दे रहे हैं, क्या आप अपने बारे में सोचो, किसी दूसरे के बाद सोचो अपने लिए कि इस्माइल मौत तो तेरी करीब आ रही है, अगर इसी गफलत में मर गया तो तेरा क्या होगा, न तेरे कलमे का ठिकाना, न तेरी नमाज का ठिकाना, न तेरे अखलाक का ठिकाना, न तेरी जिंदगी का ठिकाना, इस हाल में मौत आ गई तो तेरा क्या होगा। तेरे लिए मौत से पहले अल्लाह ने मौका दिया है, अगर तू थोड़ी मेहनत कर लेगा, अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहनत की कदर करता है, अल्लाह ताला जिंदगी का फिर सही कर देगा। इसलिए इस तरीके से अपने आप को जमाओ, और अगर हिम्मत नहीं पड़ती तो हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन बैठो सोचो अल्लाह से कहो कि अल्लाह तेरे दीन के खातिर जाने की तो मुझे भी जरूरत है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे माफ कर दे और मुझे हिम्मत दे दे, मुझे हिम्मत दे दे। अगर अल्लाह से आप दुआ भी करते रहोगे फिर भी अल्लाह आपको महरूम नहीं करेगा। खुद भी बैठो और सबको बिठाने की कोशिश करो, और खुद भी अपने लिए सोचो और अल्लाह से मांगो, और अल्लाह तौफीक दे तो इन दिनों अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह मैं कर से तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह के बंदे अल्लाह से मामला करते हैं सच्चाई का, अल्लाह उन्हें सच्चा कर दिखाते हैं, अल्लाह उनसे दीन का काम लेते हैं। कोई भी तबीयत दीन के काम में लगने वाला बर्बाद नहीं हुआ, दीन के काम में लगने वाले की खुदा ने दुनिया को भी बेहतर किया है और आखिर की जिंदगी भी खुदा ने बेहतर कर दी है। आबुदा से हमारी गुजारिश ये है, अपने आप को जमाओ, सोचो और एक 15 मिनट अपनी तरतीब बना के बैठ कर खुद भी अपने आप को तैयार करो और अपने दूसरे भाइयों को भी तैयार करो। सब तैयार हो भाई दोस्तों, अब बैठे रहो और अब मेरे दो जिन खुश नसीब बंदों के दिल में अल्लाह ने बात डाली हो वो खड़े होकर पेश करें अपने आप को कि इंशाल्लाह कल से 4 महीने हम तैयार हैं। आपकी पहल करने पर और भी दे तो खड़े होंगे, खुदा उनका सवाब भी आपको देगा। पहल करो, अपने आप को पेश करो और खड़े होना शुरू करो कि इंशाल्लाह हम 4 महीने तैयार हैं। खड़े रहे और खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। जमात हो तो जमात खड़ी हो जाए, अफराद हो तो अफराद खड़े हो जाए। जिन्होंने अपने मकाम पर इरादा किया वो भी खड़े हो जाओ, जिन्होंने यहाँ आने के बाद इरादे किए वो भी खड़े हो जाओ, जिनके दिलों में खुदा ने अब डाला वो भी खड़े हो जाओ। अपने आप को पेश करो, अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हमारे तुम्हारे दिन में 3 काम है, इरादा करके पेश करना अपने आप को, 2 रकात पढ़ के अल्लाह से कबूल करवाना और अपने बस की कोशिश करना, 4th काम अल्लाह का वही आसान करेगा। अब खड़े होना शुरू करें माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जानों में, मालों में, ईमान में, आमाल में, आबरू में, इज्जत में खुदा बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और जितने को अल्लाह ने आगे बिठाया है, आगे अल्लाह ने इसीलिए बिठाया है कि मेरे बंदे अपने आप को पेश करें सबसे पहले ताकि मैं उन्हें आगे बढ़ा दूँ। इसलिए मेरे दोस्तों हर साथी अपने बारे में कुछ फैसला करो अल्लाह की मदद पर, अल्लाह पर निगाह रखियो कि अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, वही आसान करेगा, अल्लाह आसान कर देगा। इधर उधर देखोगे तो ये तो सब मेरे दोस्तों कमजोर लोग हैं। हाँ, ये कमजोर लोग हैं, इनसे मेरे दोस्त हालात से को सामने कर चलोगे नहीं चल पाओगे। अल्लाह के कुदरत को सामने कर हिम्मत कर लोगे अल्लाह चला देगा। इसलिए मेरे दोस्तों खड़े होना शुरू करें और खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गांव का नाम क्या है? जेसर। जेसर के तो घर 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 से एक आदमी चाहिए। जेसर है हमारा, यहाँ तो इज्तिमा है, अल्लाह ने आपको इज्तिमा दिया इसीलिए है कि अगर घर घर से आदमी निकालोगे तो इनकी कुर्बानी पर हर घर में खुदा दीन को जिंदा करेगा। और जब दीन घरों में आएगा तो दीन अपनी बरकतें, रहमतें, मददें सब लेकर आएगा। इसलिए मेरे भाई एक मौका है, इस मौके से फायदा उठाओ और अपने घर से अपने घर में से किसी एक की तरतीब बनाकर इस राह में निकलने की कोशिश करो और खड़े हो जाओ। जैसर का हर घर वाला खड़ा हो, जिन्होंने अब तक तय नहीं किया अब तय कर लो, अल्लाह आपसे मदद आपकी मदद करेगा, आसान करेगा। आओ भाई खड़े हो, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था, इरादे की एड़ लगाओ तुम पार अल्लाह करेंगे। आओ खड़े हो जाओ,
करो हिम्मत करो दोस्तों। अल्लाह ने दिल में बात तो उतारी है, थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है। अपना आपको पेश करेंगे अल्लाह आगे बढ़ा देंगे। जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाली है जल्दी से खड़े हो जाओ और माशाल्लाह करो, अपने आप को पेश करो। जिन्होंने पहले नाम लिखाया, जिनका इरादा था किसी मजलिस के अंदर इनकी तश्कील हुई, वसूली जमा कराई, वो सब खड़े हो जाओ। जो खड़े हैं अपने दाएं बाएं अपने भाइयों की तरफ भी निगाह उठाए।
जो बोलत है वो पावत है, जो सोचत है वो खोवत है। सोचोगे तो रह जाओगे, बोल दोगे तो अल्लाह आगे बढ़ा देगा और टालोगे तो टल जाएगा, शैतान टलवाएगा। अभी बात समझ में आने के बाद भी शैतान क्या कहेगा, हमारा मौका नहीं थी बात में जीशू, इसकी बात ना मानो। अल्लाह ने अभी मौका दिया है, बात में पता नहीं मौका मिले ना मिले, अपने आप को पेश करो आगे बढ़ाओ। ये आगे वाले खड़े होने शुरू करें तो पीछे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, है? आगे अल्लाह ने बिछाए इसीलिए ताकि आगे बढ़ो। भाई ये जितने खड़े हो ये मेरे पास आ जाओ
करीब आ जाओ, तख्त के पास आ जाओ। अब भी जिसके दिल में बात आ रही है जल्दी से तख्त के पास आ जाओ। आ जाओ माशाल्लाह, जल्दी से थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ जाओ, करो अपने आप को पेश करो, अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए खड़े हो जाओ, आओ आओ माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकत देगा, जल्दी से आगे बढ़ जाओ।
खड़े रहो, क्यों बैठ जाते हो?
खड़े रहो, खड़े रहो
यार, जवान आदमी थक गया दोस्त।
अच्छा, पीछे वालों से हम गुजारिश करते हैं, अपने आप को जमाओ दोस्तों, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। बैठो भाई, बैठो
भाई, बैठो। ओ भाई, हो
ओ भाई,
बैठ, थोड़ी देर हमारी मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा।
बैठ जाओ
बेटा, बैठ जाओ,
माशाल्लाह
अल्लाह तुमसे खुश हो, बैठ जाओ।
आमीन।
इनकी तश्कील कहाँ है
भाई? तश्कील का बड़ा कहाँ है आपका?
यू है, इस तरफ है। लो मुसाफा कहीं चलो, हम
अल्लाह सलाम करो, मुसाफा करो,
वही पॉलिसी थे।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
अल्लाह इनकी जान।
और भी जिसके दिल में आ रही है बात, जल्दी से आगे बढ़ जाओ।
आबरू में इज्जत में खुदा बरकत नसीब फरमावे।
आ जाओ खुदा, आ जाओ, चार चार महीने की नियत से आ जाओ। कल सुबह में चार महीने जमात रवाना होगी इंशाल्लाह।
क्यों रखा यार, कैसे लोग हैं यार, किसी को मारेंगे यार, यहाँ इसको रखने की क्या जरूरत है? देखो बेटा लगे नहीं है,
हटा दो भाई,
ये तो अंजाज देखा हमने, आगे इसको रखने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, तुम्हारी उम्र कितनी बेटा?
18।
क्या करते हो? दुकान बेचते हो? चलो चलो माशाल्लाह
भाई, हमारे साथी भी पहुंच जाओ, हल्के के जिम्मेदार, हमारे अमरेली के और खिताबार जमात के जो तश्कीली जिम्मेदार है, आ जाओ तक इनकी तरतीब बन जा रहा।
अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे भाई हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, इनके बाद बच्चे होंगे, कारोबार होंगे, सब होगा, ये खड़े हुए अल्लाह इनको अपनी राह में निकलने के लिए आसानी कर देगा, अगर आप खड़े होंगे तो अल्लाह आपके लिए आसान नहीं करेगा? अरे बोलो तो सही, सोचने की बात है, जब अल्लाह इनके लिए आसान करेगा, हम भी अल्लाह के भरोसे पर खड़े होकर अपने आप को पेश करेंगे, तो अल्लाह हमारे लिए भी आसान करेगा, और अल्लाह हमें हमसे भी दीन का काम लेगा, और अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। इसलिए दोस्तों अपने आप को पेश करो, हम भी आप जैसे ही हैं, हर साल आते हैं आपके पास, अल्लाह का शुक्र है तो अल्लाह ही रहता है। हाँ जब आदमी तय करता है तो ढूंढना भी आ जाता है, नहीं आ जाता।